तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं घर के नवीनीकरण के बारे में या नया घर बनवाने के बारे में। और इस वार्ता में हमें सलाह देते हैं आर्किटेक्ट श्री ललित मित्तल। और याद रहे कि ये सिर्फ आपका ज्ञान और जानकारी बढ़ाने के लिए है, आपको हमेशा किसी विशेषज्ञ की, किसी प्रोफेशनल की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आज का विषय है डीए एप्लीकेशंस काउंसिल में कैसे डाली जाए, क्या कुछ किया जाए और प्लान्स अप्रूव कैसे करवाए जाए नए घर के लिए। बहुत से लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते और यहाँ के सिस्टम में, भारत के सिस्टम में फर्क तो है ही। तो आइए चर्चा करते हैं श्री ललित मित्तल के साथ। नमस्ते ललित जी।
नमस्ते कौन जी।
आज हमें ये बताइए कि जब घर बनवाते हैं तो उसकी प्लान्स बनती हैं, तो उसका अप्रूवल वगैरह कैसे करवाना पड़ता है, क्या प्रोसेस है?
जी कुमार जी, जब आपके प्लान्स बन जाए तो फिर आपको काउंसिल में डीए के लिए, जिसको डेवलपमेंट एप्लीकेशन बोलते हैं, उसके लिए आपको अपना प्लान्स लॉन्च करने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं। और उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें एक पूरा डीए चेकलिस्ट होती है, जिसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग्स, जो कि आपको फिर फुलफिल करने पड़ते हैं और ड्राइंग्स के साथ उसको सबमिट करना पड़ता है अलोंग विद दी डीए एप्लीकेशन फी।
अच्छा, और सीडीसी भी कुछ होता है, ये क्या है?
जी, अब कुछ सालों से ये एक नया सिस्टम भी चला है अप्रूवल का, कंप्लाइंग डेवलपमेंट सिस्टम, जिसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप काउंसिल के पास ही जाएं, आप किसी प्राइवेट सर्टिफायर के पास जाके भी अपने घर का अप्रूवल ले सकते हैं।
अच्छा।
लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे।
जी बिल्कुल, तो डेवलपमेंट एप्लीकेशन और कंप्लाइंग डेवलपमेंट सर्टिफिकेट में क्या फर्क है, और काउंसिल के पास ना जाकर कहीं और जाएं तो क्या होगा?
ऐसा है कुमो जी, जो डीए होता है जो कि काउंसिल के पास, वो किसी भी तरह की आपकी डेवलपमेंट एप्लीकेशन हो उसको वो प्रोसेस करते हैं और असेस करते हैं। हाउएवर जो कंप्लाइंग डेवलपमेंट है उसमें कुछ आपको कंडीशंस होती हैं जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। इफ़ यू फुलफिल दोज कंडीशंस ओनली देन यू आर एलिजिबल टू गो फॉर अ सीडीसी। एंड सम ऑफ दीज कंडीशंस कैन बी थिंग्स लाइक मिनिमम लॉट साइज आपका कितना है, आपके लॉट की फ्रंटेज कितनी है, और उसमें आपको मिनिमम बिल्डिंग सेटबैक्स भी रखने पड़ते हैं, फ्रंट बैक साइड एंड रियर, एंड इम्पोर्टेंटली आपको ऑल्सो यू हैव टू चेक वेदर योर प्रॉपर्टी इज इन हेरिटेज और कंजर्वेशन एरिया और नॉट, और वेदर इट इज इन बुश फायर प्रोन एरिया और नॉट, क्योंकि अगर ये होए तो फिर यू डू नॉट यू नो क्वालिफाई फॉर सीडीसी।
अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। अच्छा, अगर जब डेवलपमेंट एप्लीकेशन डालते हैं काउंसिल वगैरह को, तो कुछ सलाह दीजिए, क्या कुछ हमें करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए?
जी, आजकल कई काउंसिल्स अब यू नो ऑनलाइन डीए एप्लीकेशंस भी रिसीव करने लगे हैं, लेकिन अभी भी जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है कि आप ड्राइंग्स बना के और काउंसिल के पास जाके फिजिकल, मतलब उसके जो प्रिंट आउट्स वगैरह हैं वो सबमिट करें, तो उसका प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले तो यू शुड ट्राई टू एंगेज अ प्रोफेशनल, क्योंकि आजकल ये काउंसिल रिक्वायरमेंट्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि आप कई बार यू नो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आपने कोई प्रोफेशनल एंगेज किया है तो ही और शी कैन असिस्ट यू थ्रू द प्रोसेस।
अच्छा, और ऐसा है कि अगर ये डिस्कशन वगैरह किए बगैर ही हम डीए एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं तो क्या हो सकता है?
जी कुमार जी, उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपने डीए लॉन्च किया और आपने काउंसिल से सबमिट से डिस्कस नहीं किया, तो हो सकता है कि आप में आपकी एप्लीकेशन में कई सारी ऐसी चीज़ें हों जो कि आपने सबमिट ना की हों, और उससे आपका जो एप्लीकेशन असेसमेंट प्रोसेस है वो डिले हो सकता है, क्योंकि जब तक आप पूरी इंफॉर्मेशन काउंसिल को नहीं देते हैं तब तक वो एप्लीकेशन असेस करना शुरू नहीं करते हैं, एंड दे पुट इट ऑन होल्ड।
तो एक आर्किटेक्ट को एंगेज करने के अलावा क्या किसी और कंसल्टेंट के साथ भी बातचीत करनी चाहिए?
जी कुमार जी, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्किटेक्ट जो है प्राइमरी कंसल्टेंट है बेसिक, बट उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन योर काउंसिल एंड डिपेंडिंग ऑन दी प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स आपको और भी कई कंसल्टेंट्स की इनपुट चाहिए होती है, जैसे लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, डिजाइनर है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, हेरिटेज कंसल्टेंट है, बुशफायर कंसल्टेंट है, या कई बार अगर प्रॉपर्टी थोड़ा नॉइजी एरिया में है तो यू मे नीड एकॉस्टिक कंसल्टेंट ऑल्सो।
ये तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स की सलाह लेनी पड़ती है, तो सोच समझ के आपको ये एप्लीकेशन डालना चाहिए, ऐसे एरिया में घर लेना चाहिए। और जब आपका डेवलपमेंट एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए तो फिर क्या कदम उठाने हैं?
हाँ, जब आपका डीए एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि बिफोर यू कमेंस द कंस्ट्रक्शन आपको कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो ये कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट अगेन आप या तो काउंसिल से ले लें या फिर प्राइवेट सर्टिफायर आर ऑल्सो ऑथराइज एंड क्वालिफाइड टू इश्यू कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट।
इसमें सीसी कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा?
जी कुमुद जी, ऐसे होते कि सीसी कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के लिए आपको और भी कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि सिडनी वाटर से अप्रूवल, खास करके अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं या नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कोई सीवर लाइन है तो आप उसको डैमेज तो नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रूव करने के लिए सिडनी वाटर हैज टू कंफर्म एंड एंडोर्स योर प्लान्स। और उसके अलावा आपको कई सारी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस और कई सारी काउंसिल को भी फी वगैरह जमा करानी पड़ती है।
अच्छा जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि क्या कुछ करना पड़ता है एप्लीकेशन काउंसिल में लॉन्च करने से पहले।
जस्ट वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड कुमु जी, कि जब आप डीए लॉन्च करते हैं तो उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टिप्स इज कि आप काउंसिल की वेबसाइट पे भी जाके बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और वो काफी आजकल सब काउंसिल्स की वेबसाइट्स हैं वो काफी थॉरली सब एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए।
जी जी।
एंड When you go and see the duty planner, तो आप एक अपना लिस्ट बना के ले जाएं और क्या क्या आइटम आपको डिस्कस करने हैं वो आप उनसे डिस्कस कर लीजिए।
बिल्कुल, एक चेक लिस्ट बना कर जाएं तो और बेहतर रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया कुमार जी।